एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम बात करने वाले हैं अल्बेर कमू की, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी पर साहित्य और दर्शन दोनों पर ही गहरी छाप छोड़ी।
बिल्कुल, और छाप ही नहीं बल्कि एक कह सकते हैं एक मशाल की तरह भी काम किया। कामो सिर्फ एक लेखक या दार्शनिक नहीं थे, वो अपने जमाने की एक अहम नैतिक आवाज थे।
हाँ,
उन्होंने वो मुश्किल सवाल उठाए जिनसे हम शायद आज भी जूझते हैं, जिंदगी का मतलब क्या, नाइंसाफी के सामने खड़े कैसे हों।
और इसीलिए मुझे लगता है वो आज भी इतने जरूरी लगते हैं। उनके आइडियाज जैसे निरर्थकता या फिर विद्रोह की बात सोचने पर मजबूर करते हैं। हमने भी काफी कुछ पढ़ा है उनके बारे में, उनके जीवन, उनके दर्शन, उनके लेखन से जुड़े कई स्रोतों को देखा इस चर्चा के लिए।
कि कामों की दुनिया की एक आप कह सकते हैं एक झलक मिले, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, उनके विचार क्या थे, उनकी अहम किताबें कौन सी थीं, और ये समझने की कोशिश कि आज भी दुनिया भर में लोग उन्हें क्यों पढ़ते हैं, क्यों सराहते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं उस जमाने से जब कामू पैदा हुए थे, 1913। जगह थी फ्रांसीसी अल्जीरिया का मोंडोवी शहर।
वो दौर ही ऐसा था, यूरोप में पुरानी बातें हैं, पुरानी निश्चितता हैं, वो सब चरमरा रही थी, विश्व युद्ध का खतरा था।
बिल्कुल, और कामू की अपनी पहचान भी थोड़ी उलझी हुई थी। वो थे पाइड नॉयर,
यानी
अल्जीरिया में जन्मे लेकिन यूरोपीय मूल के फ्रांसीसी। तो ये पहचान ही अपने आप में एक तनाव लिए हुए थी। एक तरफ फ्रांस, दूसरी तरफ अल्जीरिया की जमीन जहां वो पले बढ़े। और ये चीज, ये बाहरी होने का एहसास या कहें अजनबी होने का एहसास उनके लिखने में बार बार आता है।
और माहौल भी कैसा था उस वक्त, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हाँ, तो एक तरह का मोहभंग था समाज में,
और दर्शन की दुनिया में अस्तित्ववाद का उदय हो रहा था। जां पोल सात्र, सिमोन द बुवार जैसे नाम सामने आ रहे थे।
लेकिन कामू का अस्तित्ववाद से रिश्ता वो सीधा नहीं था, है ना? वो खुद को शायद उस लेबल में नहीं देखते थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा दूरी बना के रखते थे।
वो अपने फलसफे को निरर्थकतावाद या एब्जॉर्डिज्म कहना ज्यादा पसंद करते थे। हम इस पर आएंगे आगे। उनके जीवन पर बड़ी घटनाओं का भी जबरदस्त असर पड़ा, जैसे दूसरा विश्व युद्ध।
हाँ, उसमें तो उन्होंने हिस्सा भी लिया था फ्रांसीसी प्रतिरोध में।
जी हाँ, और वो जो गुप्त अखबार था कॉम्बैट, उसके संपादक भी रहे। फिर शीत युद्ध का माहौल, वो वैचारिक खींचतान, और शायद सबसे ज्यादा असर डाला अल्जीरिया के स्वतंत्रता संग्राम ने जो 1954 में शुरू हुआ।
वो तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा नैतिक रूप से, एक तरफ अपनी जन्मभूमि, दूसरी तरफ फ्रांस, कहाँ खड़े हों।
बेहद मुश्किल, एक निजी त्रासदी जैसा। वो हिंसा के तो खिलाफ थे, पर किसी एक पक्ष का खुलकर साथ देना भी उन्हें गवारा नहीं था, और इसी वजह से उनके जो समकालीन बुद्धिजीवी थे जैसे सार्त्र।
हाँ, सार्त्र से उनके रिश्ते तो काफी चर्चित रहे, दोस्ती भी फिर मतभेद भी।
बिल्कुल, खासकर राजनीतिक विचारधारा को लेकर उनके मतभेद काफी गहरे हो गए थे बाद में।
अच्छा, अगर हम उनके शुरुआती जीवन पर आए तो अल्जीयर्स के गरीब इलाके में पले बढ़े, पिता की मौत बहुत जल्दी हो गई थी।
हाँ, जब कामू एक साल से भी कम के थे तब प्रथम विश्व युद्ध में उनके पिता की मृत्यु हो गई। माँ कैथरीन स्पैनिश मूल की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी और सुनने में भी दिक्कत थी, दादी का काफी प्रभाव था, तो गरीबी थी, नुकसान का अनुभव था, और इसने यकीनन उनमें इंसानी तकलीफ के लिए गहरी हमदर्दी पैदा की।
लेकिन आपने कहा अल्जीयर्स, वहां की धूप, समंदर का भी जिक्र आता है उनके लेखन में।
कल रियलिटी है, उसकी कद्र करना उन्होंने वहीं सीखा। ये उनके लेखन में एक उम्मीद की तरह, एक रोशनी की तरह मौजूद रहता है।
और फिर पढ़ाई, शिक्षा ने कैसे रास्ता बदला? सुना है एक टीचर का बड़ा हाथ था।
हाँ, ये एक अहम मोड़ था। उनके प्राइमरी स्कूल के टीचर थे लुई जर्मेन। उन्होंने इस लड़के की प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने मदद की कि कामू को स्कॉलरशिप मिले और वो अल्जीयर्स के एक बड़े स्कूल ग्रैंड लिसे में जा सकें। कामू ने बाद में अपना नोबेल पुरस्कार भाषण भी उन्हीं को समर्पित किया।
अच्छा, ये तो बड़ी बात है।
जी, फिर यूनिवर्सिटी में दर्शन पढ़ा, नीत्शे, दोस्तोयेवस्की, प्राचीन यूनानी विचारक, इन सब का गहरा असर पड़ा।
लेकिन सेहत की समस्याएं भी जल्दी शुरू हो गई, टीबी।
हाँ, 1930 में काफी कम उम्र में ही तपेदिक यानी टीबी का पता चला, और इसका असर भी गहरा हुआ। एक तो उनका फुटबॉल गोलकीपर बनने का सपना टूट गया।
वो गोलकीपर थे?
हाँ, यूनिवर्सिटी टीम में खेलते थे और इसे काफी महत्व देते थे। कहते थे इससे टीम वर्क और दबाव में शांत रहना सीखा। तो टीवी ने वो करियर खत्म कर दिया। और शायद उससे भी ज्यादा इसने उन्हें मौत के नजदीकी का जिंदगी के नाजुक होने का एहसास कराया। शायद यहीं से उनके दर्शन की जो मुख्य धारा है वो बननी शुरू हुई। फिर वो पत्रकारिता और थिएटर की तरफ मुड़े।
चलिए अब आते हैं कामू के सबसे अहम और शायद सबसे ज्यादा चर्चित विचार पर, निरर्थकतावाद या एब्सर्डिज्म। ये है क्या आखिर, थोड़ा समझाएंगे।
देखिए, कामू के लिए निरर्थकता कोई नेगेटिव चीज नहीं है, मतलब कोई निराशा वाली बात नहीं है। ये बस एक सच्चाई का बयान है। सच्चाई ये कि हम इंसान, हमारी फितरत है कि हम दुनिया में, अपनी जिंदगी में कोई मतलब ढूंढते हैं, कोई तर्क, कोई उद्देश्य खोजते हैं।
हाँ, ये तो हम सब करते हैं।
बिल्कुल, लेकिन ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारी इस तलाश पर, हमारी इस प्यास पर खामोश रहता है। वो कोई तैयार जवाब नहीं देता, कोई ऊपर से तय किया हुआ मतलब नहीं है। तो ये जो टकराव है हमारी मतलब की तलाश और दुनिया की ये खामोशी, इसी गैप को, इसी तनाव को कामू निरर्थक या एब्सर्ड कहते हैं।
अच्छा, तो अगर दुनिया या जिंदगी निरर्थक है तो फिर जीने का क्या मतलब? कामू इसका क्या जवाब देते हैं? क्या वो निराशा की तरफ ले जाते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो कामू का सबसे अहम मोड़ है। वो कहते हैं कि आत्महत्या कोई जवाब नहीं है, वो तो निरर्थकता के सामने हार मान लेना हुआ। उनके लिए निरर्थकता का एहसास होना, ये तो जिंदगी की असली शुरुआत है। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि कोई पहले से तय मतलब नहीं है, तभी हम अपना मतलब बनाने के लिए आज़ाद होते हैं। और वो तीन रास्ते सुझाते हैं इस निरर्थकता का सामना करने के लिए: विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून।
विद्रोह, स्वतंत्रता, जुनून। अच्छा, ये क्या है? विद्रोह किस चीज से?
कि दुनिया खामोश है, कोई परम सत्य नहीं है, फिर भी जिंदगी को जीना, उसकी कीमत को मानना, हार ना मानना। स्वतंत्रता का मतलब है पुराने बंधनों से आजादी, झूठी उम्मीदों से, समाज के बनाए नियमों से जो हमें एक खास तरीके से सोचने या महसूस करने को कहते हैं, उनसे आजाद होना। और जुनून, जुनून मतलब जिंदगी को भरपूर जीना, हर पल को, हर अनुभव को पूरी शिद्दत से महसूस करना, क्योंकि यही एक जिंदगी है जो हमारे पास है।
और इसी बात को समझाने के लिए वो सिसिफिस वाले मिथ का इस्तेमाल करते हैं, है ना? वो कहानी जिसमें एक राजा को एक चट्टान बार बार पहाड़ पर चढ़ानी पड़ती है।
हाँ बिल्कुल, उनका मशहूर निबंध है द मिथ ऑफ सिसिफिस। सिसिफिस का काम एकदम निरर्थक है, चट्टान ऊपर पहुंचते ही वापस लुढ़क जाती है, रोज यही करना है। लेकिन कामू कहते हैं कि अगर सिसिफिस इस सच्चाई को, इस निरर्थकता को पूरी तरह स्वीकार कर ले और इस काम को ही अपना विद्रोह बना ले, तो वो इस बेमतलब लगने वाले काम में भी एक गरिमा, एक तरह की खुशी पा सकता है। उनका वो मशहूर वाक्य है, हमें सिसिफस को खुश तसव्वुर करना चाहिए। मतलब खुशी या अर्थ बाहर से नहीं आएगा, वो हमारे नजरिए से पैदा होगा।
ये तो हुई जिंदगी को देखने की बात, एक व्यक्तिगत फलसफा। लेकिन कामू विद्रोह को सिर्फ निजी दायरे तक नहीं रखते, वो इसे एक नैतिक और राजनैतिक स्तर पर भी ले जाते हैं, खासकर अपनी किताब द रेबल, लॉम रिवोल्टे।
बिल्कुल सही, द रेबल में वो इतिहास को देखते हैं कि कैसे इंसानों ने अन्याय, जुल्म और बेमतलब की तकलीफों के खिलाफ आवाज उठाई है, विद्रोह किया है। लेकिन यहां वो एक बहुत ही जरूरी फर्क करते हैं। वो कहते हैं कि विद्रोह, रिवोल्ट और क्रांति, रेवोल्यूशन में अंतर है।
अच्छा, क्या अंतर है?
उनके मुताबिक सच्चा विद्रोह हमेशा इंसानी जिंदगी और गरिमा का सम्मान करता है, वो अपनी सीमाएं जानता है, वो निरंकुश नहीं बनता। जबकि क्रांतियां, जो अक्सर एक आदर्श समाज बनाने के ऊंचे दावे के साथ शुरू होती हैं, वो कई बार निरपेक्ष न्याय के नाम पर हिंसा, आतंक और हत्या का रास्ता पकड़ लेती हैं, और अंत में वो उसी जुल्म जैसी बन जाती हैं जिसके खिलाफ वो शुरू हुई थीं।
तो ये एक तरह से उस वक्त के जो टोटलिटेरियन सिस्टम थे, जैसे सोवियत कम्युनिज्म, उसकी आलोचना थी।
हाँ, सीधी आलोचना थी। और इसी बात पर उनका सार्त्र जैसे कई वामपंथी विचारकों से तीखा मतभेद हुआ था, क्योंकि सार्त्र उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी के ज्यादा करीब थे। कामू का मानना था कि कोई भी विचारधारा, कोई भी लक्ष्य इंसानी जान से बड़ा नहीं हो सकता।
और यहीं से शायद उनका जोर एकजुटता यानी सॉलिडेरिटी पर आता है और मानवीय गरिमा पर, जैसा कि उनकी दूसरी मशहूर नॉवल प्लेग, ला पेस्ट में दिखता है।
बिल्कुल, प्लेग उनके विचारों में एक और अहम पड़ाव है। यहां फोकस निजी निरर्थकता से हटकर सामूहिक अनुभव और जिम्मेदारी करा जाता है।
हाँ, प्लेग तो मैंने भी पढ़ी है।
हाँ।
और आजकल तो खासतौर पे लोग उसे दोबारा पढ़ रहे हैं।
हाँ, कोविड के दौरान ये किताब फिर से बेस्ट सेलर बन गई थी।
कहानी अल्जीरिया के उरान शहर में प्लेग फैलने की है, लेकिन ये सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है। इसे आप नाजी कब्जे के रूपक की तरह पढ़ सकते हैं, या दुनिया में फैली किसी भी बुराई के रूपक की तरह, या बस अस्तित्व की मुश्किलों के रूपक की तरह। कहानी दिखाती है कि कैसे इस साझा मुसीबत में डॉक्टर रियू जैसे आम लोग डर और नाउम्मीदी के बावजूद एक दूसरे का साथ देते हैं, हमदर्दी दिखाते हैं, वो लड़ते हैं, हालांकि जीत की कोई गारंटी नहीं है। ये मानवीय एकजुटता की ताकत का बयान है।
तो उनके काम में एक तरह का विकास दिखता है, अजनबी के अकेलेपन से प्लेग की एकजुटता तक।
हाँ, कह सकते हैं। हालांकि वो दोनों किताबें लगभग एक ही समय पर आईं, लेकिन विषय अलग है। अजनबी की एथ्रोंजे, जो 1942 में आई, शायद उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। उसका मुख्य पात्र मिरसॉल्ट, वो तो एकदम अलग ही है। हाँ, बहुत अजीब किरदार है। अपनी माँ की मौत पर रोता नहीं, समाज क्या सोचता है परवाह नहीं करता।
बिल्कुल। और फिर एक दिन बिना किसी खास वजह के बस धूप और गर्मी से चिढ़कर समुंदर किनारे एक अरब आदमी को गोली मार देता है। और जब मुकदमा चलता है तो उसे सजा असल में कत्ल से ज्यादा इस बात के लिए मिलती है कि वो समाज के हिसाब से नॉर्मल बर्ताव नहीं करता, वो झूठे आंसू नहीं बहाता।
तो ये उपन्यास निरर्थकता को और समाज के जो ढकोसले हैं उनको दिखाता है।
हाँ, ये निरर्थकता का जैसे साहित्यिक मैनिफेस्टेशन हो। मिरसॉल्ट की जो उदासीनता है वो दुनिया की उदासीनता का ही प्रतिबिंब है।
हाँ।
और उसकी भाषा भी देखिए, एकदम सपाट, ऑब्जेक्टिव, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। इसे एक्रिक्योर ब्लॉन्श या व्हाइट राइटिंग कहा गया। ये स्टाइल भी कामों की पहचान बन गया।
और सिसिफिस का मिथक भी उसी साल आया, 1942 में ही, तो ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। अजनबी कहानी है और सिसिफिस उसका दार्शनिक आधार।
फिर प्लेग आई 1947 में, फिर विद्रोही 1951 में, जिसकी हमने बात की, और उसके बाद 1956 में पतन, ला शूट। ये उपन्यास कैसा था?
पतन थोड़ा अलग मिजाज का उपन्यास है, ज्यादा जटिल, ज्यादा मनोवैज्ञानिक। ये पूरा उपन्यास एक ही आदमी, जॉन बातिस्ट क्लेमेंस का लंबा मोनोलॉग है। वो एम्स्टर्डम के एक बार में अजनबियों से बात करता है और अपनी कहानी सुनाता है। वो पहले एक सफल वकील था, बहुत इज्जत थी, लेकिन अब वो खुद को जज पेनिटेंट कहता है।
जज पेनिटेंट मतलब
ऐसा जज जो पहले अपने गुनाहों को कबूल करता है, अपनी नैतिकता के खोखलेपन को उजागर करता है, और फिर उसी आधार पर दूसरों को भी जज करता है। ये किताब अपराध बोध, पाखंड, हम सब की नैतिक जिम्मेदारियों और आधुनिक दुनिया में निर्दोष होने की असंभवता जैसे विषयों पर एक गहरा तीखा व्यंग्य है।
तो कामों का फलक काफी बड़ा था, उपन्यास, निबंध, नाटक। आज उनकी विरासत को कैसे देखते हैं? शुरुआत में तो काफी शोहरत मिली, पर बाद में विवाद भी हुए, जैसा आपने कहा।
जब उन्होंने कम्युनिज्म की आलोचना की और फिर अल्जीरिया के मसले पर जब उन्होंने एक तरह का मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश की, तो वो वामपंथी खेमे में काफी अकेले पड़ गए। सार्थ से झगड़ा हो गया, उन पर आरोप लगे कि वो राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हैं।
लेकिन वक्त के साथ क्या उनकी अहमियत कम हुई या फिर से बढ़ी?
नहीं, उनकी अहमियत बढ़ी है, खासकर 1960 में उनकी अचानक मौत के बाद। वो एक कार एक्सीडेंट में मारे गए, सिर्फ 46 साल की उम्र में। और फिर 1994 में जब उनका अधूरा उपन्यास पहला आदमी, लफ्रमेर ओम, छपा, जो काफी हद तक आत्मकथात्मक था, तो लोगों ने उनके काम को एक नई नजर से देखा। उससे पता चला कि उनके लेखन की जड़ें उनके अपने अल्जीरियाई बचपन, उनकी गरीबी, उनकी माँ के साथ उनके रिश्ते में कितनी गहरी हैं।
तो आज उनका असर कहाँ कहाँ दिखता है? साहित्य में तो है ही।
दार्शनिक उपन्यास को पॉपुलर बनाने में उनका बड़ा हाथ है। उनकी वो सपाट सीधी शैली, उसने रेमंड कारवर से लेकर हारुकी मुराकामी तक दुनिया भर के लेखकों को प्रभावित किया है। लेकिन असर सिर्फ साहित्य तक नहीं है।
और कहाँ?
सिनेमा पर असर है, फ्रांसीसी न्यू वेव पर। संगीत पर असर है, जैसे रॉक बैंड द क्योर ने उनके काम से प्रेरणा ली। मनोविज्ञान में अलगाव, एलिनिएशन और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी की जो बहसें हैं, उनमें कामों के विचार आते हैं। राजनीतिक चिंतन में भी, तानाशाही की उनकी आलोचना, विद्रोह की सीमाओं पर उनकी सोच, ये आज भी प्रासंगिक हैं।
और आज के समय में सबसे ज्यादा क्या चीज प्रासंगिक लगती है उनके विचारों में?
देखिए, एक तो प्लेग ने हमें दिखाया कि कैसे एक महामारी जैसे सामूहिक संकट में इंसानियत, एकजुटता और जिम्मेदारी के क्या मायने होते हैं, वो तो हमने हाल में ही देखा। दूसरा, विद्रोही में जो उन्होंने राजनीतिक हिंसा, आतंकवाद और वैचारिक कट्टरता के खतरों के बारे में लिखा था, वो आज भी कितना सच लगता है ना। और उनकी जो निरर्थकता की धराना है, वो शायद आज की दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखती है। जहां पुराने विश्वास टूट रहे हैं और लोग मतलब की तलाश में भटक रहे हैं। शायद उनकी सबसे बड़ी देन ये नहीं है कि वो जवाब देते हैं, बल्कि ये है कि वो हमें सही सवाल पूछना और मुश्किल सच्चाइयों के साथ ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। वो कहते हैं, जटिलता को स्वीकार करो, आसान नारों से बचो और सबसे ऊपर इंसानी गरिमा को रखो।
उनके कुछ कथन भी बहुत मशहूर हैं जो शायद उनके इन्हीं विचारों को पकड़ते हैं। जैसे वो एक है, सर्दियों की गहराई में मैंने आखिरकार जाना कि मेरे भीतर एक अजेय गर्मी है।
हाँ, ये मानवीय लचीलेपन, रेजिलियंस की बात है कि चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो, अंदर एक उम्मीद, एक ताकत बाकी रहती है। या फिर सिसिफस से वो मशहूर लाइन, ऊंचाइयों की ओर संघर्ष ही इंसान के दिल को भरने के लिए काफी है, हमें सिसिफस को खुश तसव्वुर करना चाहिए।
यानी उस निरर्थक लगने वाले संघर्ष में ही मायने ढूंढना।
बिल्कुल, और अजनबी की वो पहली लाइन ही कितनी असरदार है, माँ आज मर गई या शायद कल, मैं पक्का नहीं हूँ। मिर्सोल्टा पूरा अलगाव उसी एक लाइन में आ जाता है।
या प्लेग से वो बात कि बुराई या संकट भी लोगों को खुद से ऊपर उठने में मदद कर सकता है।
हाँ, कि मुश्किल वक्त हमें जोड़ता है, हमें बेहतर बना सकता है। और उनके नोबल भाषण की वो बात भी बहुत अहम है, लेखक इतिहास बनाने वालों का साथ नहीं दे सकता, उसे उनका साथ देना चाहिए जो इतिहास भुगतते हैं।
यानी सत्ता के साथ नहीं, पीड़ितों के साथ खड़े होना।
जी, ये लेखक की नैतिक जिम्मेदारी है।
कुछ और रोचक बातें भी हैं उनके बारे में जो शायद कम लोग जानते हों, जैसे आपने फुटबॉल वाली बात बताई।
हाँ, वो गोलकीपर थे और टीबी की बीमारी ने उनकी सोच पे गहरा असर डाला। फ्रांसीसी प्रतिरोध में उनकी भूमिका अहम थी। ये भी दिलचस्प है कि जब उन्हें सिर्फ 44 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो वो बहुत खुश नहीं थे, बल्कि चिंतित थे। उन्हें लगा कि शायद ये बहुत जल्दी मिल गया, वो अभी इसके हकदार नहीं हैं।
और सार्त्र से उनका झगड़ा तो खैर काफी मशहूर है ही।
हाँ, वो विद्रोही किताब पर हुआ था और फिर अल्जीरिया पर उनके अलग विचारों ने उस दरार को और गहरा कर दिया। फ्रांस के दो सबसे बड़े बुद्धिजीवियों के रास्ते अलग हो गए।
और उनकी मौत भी कितनी अचानक हुई, एक कार एक्सीडेंट में। और कहते हैं कि उस वक्त उनके पास पहला आदमी की पांडुलिपि थी।
हाँ, विलेब्लिन के पास वो हादसा हुआ, मिशेल गैलिमार्ड की गाड़ी में थे वो, पांडुलिपि उनके ब्रीफकेस में मिली थी। एक अधूरी जिंदगी, एक अधूरा उपन्यास, इसमें भी शायद एक तरह की निरर्थकता दिखती है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को क्या छोड़ें? कामू आज हमें क्या सोचने पर मजबूर करते हैं?
मुझे लगता है कामू आज भी हमें एक बुनियादी सवाल के सामने खड़ा करते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी सकते हैं जहां कोई ऊपर से दिया गया, बना बनाया मतलब मौजूद नहीं है? क्या हम इस निरर्थकता का सामना करते हुए, इसके खिलाफ विद्रोह करते हुए, अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए, जिंदगी को जुनून से जीते हुए और सबसे ज़रूरी, एक दूसरे के साथ हमदर्दी और एकजुटता दिखाते हुए जी सकते हैं? आज की दुनिया जो इतनी तेज़ है, इतनी बटी हुई है, जहां मतलब ढूंढना शायद और मुश्किल हो गया है, क्या वहां कामू की सोच हमें कोई रास्ता दिखा सकती है? क्या आज भी सिसिफस को खुश तसव्वुर करना मुमकिन और जरूरी है?
सोचने वाले सवाल है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।